ओम शांति। मानव जीवन में विद्यार्थी जीवन का जो समय होता है, जो कालखंड होता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि विद्यार्थी अपने उस कालखंड में अपने जीवन के विकास के लिए, अपने जीवन की श्रेष्ठ बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए उसके पास जो भी शक्तियां होती हैं, उन सभी को एक साथ कार्य में लगाकर अपने कार्य में सफलता हासिल कर लेता है। विद्यार्थी जीवन वो समय है जब व्यक्ति अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होता है, उसके ऊपर कोई सांसारिक बोझ नहीं होते हैं, परिवार का बोझ, कमाने का बोझ, कई सारी बातें जीवन में ऐसी होती हैं जो मनुष्य के मन को अपने अधीन करके उसको कई विशेष कार्य करने के लिए रोकती हैं, उसके जीवन में रुकावट पैदा करती हैं। लेकिन विद्यार्थी जीवन में वो सारी बातें नहीं होती हैं। विद्यार्थी जीवन में परिवार का भी सपोर्ट होता है, माता पिता की गाइडेंस मिलती है, शिक्षक की गाइडेंस मिलती है, और साथ साथ सहपाठियों से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। तो कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। बाबा कहते हैं कि संसार में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो अपने जीवन में एक डिग्री को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। उसके लिए वो अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, सब कुछ उस पर न्योछावर कर देते हैं। उसके फलस्वरूप वो उस डिग्री को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि संसार में जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक डिग्री को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और जब उनको वो डिग्री हासिल होती है, प्राप्त होती है, उस डिग्री को प्राप्त करके वो खुशी खुशी घर लौटते हैं, और रास्ते में यदि उनका उसका एक्सीडेंट हो जाए जिसमें उसकी डेथ हो जाए, तो बाबा कहते हैं उसकी वो डिग्री समाप्त, एक सेकंड में डिग्री खलास। उसको यदि अगले जन्म में वो डिग्री हासिल करनी होगी तो उसके लिए उसको फिर से वो सारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो कहावत है कि गॉड स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, वो आप हम सभी के इस गॉडली स्टूडेंट लाइफ के लिए कही गई है। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट है। तो इस ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन में, जो कि स्वयं भगवान इस संसार में आकर के एक विद्यालय, एक यूनिवर्सिटी खोलते हैं, और उसके माध्यम से मानव को महामानव, मनुष्य को देवता, नर को नारायण बनाने का जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ऐसे विद्यालय में, ऐसी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से एक वो विद्यार्थी भी है जो कि मैं हूं। तो ये कितनी नशे की बात है, कितनी खुशी की बात है कि जब भगवान इस संसार में एक नई दुनिया की स्थापना का कार्य करने के लिए आए, उसके लिए उन्होंने एक विद्यालय खोला, यूनिवर्सिटी खोली, और उसके माध्यम से जो शिक्षा दी, पढ़ाई पढ़ाई, उस पढ़ाई को पढ़ने वाला मैं विशेष स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो विद्यार्थी जीवन का पूरा पूरा लाभ लेने के लिए इस विद्यार्थी जीवन के जो कई नियम हैं, कई उसूल हैं, कई धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, कई कायदे हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन के क्या कहेंगे, सिद्धांत और उसूल और नियम, मर्यादाएं, रूल्स रेगुलेशन, आगे बढ़ने की सीढ़ी और संयम, अनुशासन। तो स्टूडेंट्स के स्वधर्म, तो जो विद्यार्थी जीवन में कई बातें ऐसी हैं जिनको हमें स्वधर्म के रूप में अपनाकर उसको जीवन में लाना है, उसको फॉलो करना है, तभी हम इस ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन का पूरा पूरा लाभ ले सकेंगे। तो इस विद्यार्थी जीवन के ऐसे कौन कौन से धर्म हैं, नियम हैं, स्वधर्म हैं, जिनको हमें फॉलो करना है, तो उसमें सबसे पहली बात है शिक्षक के प्रति प्यार और रिगार्ड, सम्मान। बाबा कहते हैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो शिक्षक है भगवान, वो दूर देश से आता है, पराये देश से इस संसार में पढ़ाने के लिए आता है, और कितनी रुचि से आता है। तो भगवान जो पराये देश से संसार में आता है, बड़ी रुचि से पढ़ाने के लिए आता है, और पढ़ाई के कोई फीस भी नहीं लेता है, निःशुल्क पढ़ाता है। आजी तो बाबा कहते हैं कि भगवान जो इस संसार में पढ़ाने के लिए आता है, बड़ी रुचि से आता है, कोई फीस नहीं लेता है, आप पर बहुत मेहनत करता है, तो उसका हमें कितना सम्मान रखना है, उसके प्रति हमारा कितना प्यार होना चाहिए। संसार में हम देखते हैं कई कई ऐसे टीचर होते हैं जो संसार में नामी गिरामी होते हैं, तो जिन विद्यार्थियों को वो पढ़ाते हैं वो विद्यार्थी सारा जीवन उनको भूलते नहीं हैं, उनको याद रखते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ने हमें पढ़ाया था। तो बाबा कहते हैं कि परम शिक्षक परमात्मा जब इस संसार में पढ़ाने के लिए आए तो उनका हमें कितना सम्मान देना है, उनको हमें कितना उनका रिगार्ड रखना है, और उनका रिगार्ड रखना अर्थात वो जो कुछ भी कहते हैं वो हमें स्वीकार करना है, उसको अमल में लाना है। टीचर हमें कोई भी काम देते हैं तो हमारा जवाब होना चाहिए यस सर, जी सर, ऐसे नहीं कि देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। तो शिक्षक का सम्मान और शिक्षक से प्यार अर्थात उसके जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके उस पर अमल करें, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाएं, उन धारणाओं में जीवन जिए। तो पहला स्वधर्म है शिक्षक के प्रति प्यार और सम्मान। सेकंड स्वधर्म है पढ़ाई के प्रति प्यार और सम्मान। इस साल के सीजन के जो अव्यक्त मुरली, फर्स्ट अव्यक्त मुरली में जो भाई बहने बाबा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, बाबा ने उनसे पूछा कि इस बार इस ग्रुप में जो पहली बार आए हैं और जो रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करें, क्योंकि तो बाबा ने कहा उसमें कि बाप दादा परम धाम से आते हैं, शिव बाबा परम धाम से आते हैं और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से आते हैं और आ करके आपको पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाई कितनी श्रेष्ठ है, कितनी महान है। बाबा ने कहा कि आपको चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ाते हैं और आपको हर दिन नए नए डायरेक्शंस देते हैं, तो ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। अगर ये पढ़ाई किसी भी कारण से कारण या कारण मिस होती है तो बाबा ने वहां वार्निंग दिए। तो बाबा ने कहा कि तीन तख्त के मालिक नहीं बन सकेंगे, दो तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। तो हमें देखना है कि उन तीन तख्त के मालिक बनने के लिए हमारा इस पढ़ाई के प्रति कितना अटेंशन है। तो बाबा ने कहा कि यदि आपको समय नहीं मिलता है, आप स्कूल में क्लास में पढ़ने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो बाबा ने कहा कि उसके लिए विधि बनाओ। और बाबा ने खास कहा कि वर्तमान समय जो साइंस के साधन हैं वो बाप की ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले ही निकले हैं और विशेष वो साधन आपके लिए निकले हैं, तो उन साधनों का लाभ लेकर के अपनी इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी है, पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करनी है। तो पढ़ाई से प्यार, पढ़ाई के प्रति सम्मान, अर्थात पढ़ाई को कंटिन्यू पढ़ना, रेगुलर पढ़ना। बाबा ने कहा किसी भी कारण से यह पढ़ाई मिस ना हो। दूसरी बात है, यह पढ़ाई बहुत रुचि से पढ़नी है। जैसे भगवान रुचि से पढ़ाने के लिए आते हैं, उसी प्रकार से हम सभी विद्यार्थियों को यह पढ़ाई भी बड़ी रुचि से पढ़नी है, खुशी खुशी से पढ़नी है। ऐसा ना महसूस हो कि वही बातें हैं या वही मुरली है जो हमने कल सुनी थी, आज के मुरली में भी वही बहुत सारी बातें हैं, बाबा बार बार वही बातें रिपीट करते हैं। तो पढ़ाई को बहुत रुचि से पढ़नी है, पढ़ाई को रुचि से पढ़ना, रेगुलर पढ़ना। तो बाबा ने कहा कि इसको कहेंगे पढ़ाई से प्यार। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारा आपसे बहुत प्यार है लेकिन पढ़ाई पढ़ने का समय नहीं मिलता है, समय का अभाव है। तो बाबा ने कहा कि बाप नहीं मानता है, यदि बाप से प्यार है तो बाप की पढ़ाई से भी प्यार अवश्य होगा, क्योंकि बाप संसार में आते ही हैं पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। हाँ, मुरलीधर से प्यार अर्थात उसके मुरली से प्यार। ये संसार में लोग कहते हैं कि गीता को हम मानते हैं, आप लोग गीता को नहीं मानते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आप गीता की मानते हैं, तो वो गीता की नहीं मानते, गीता को मानते हैं, जो गीता में शिक्षाएं हैं, धारणाएं हैं, उनको नहीं मानते हैं। तो वो नियम हमारे ऊपर लागू ना हो कि हम भगवान को तो मानते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को हम अमल में नहीं लाते हैं, और वो शिक्षाएं मिलने का आधार है भगवान के मुरली। तो मुरली से प्यार अर्थात मुरली को रेगुलर पढ़ना, रेगुलर सुनना, मुरली से जो विशेष पॉइंट्स होते हैं उनको नोट करना, उन पर मनन चिंतन करना, उनको याद रखना, रट्टा मारना और समय पर उनको यूज करना, तभी कहा जाएगा कि मुरली से प्यार है, मुरली के प्रति हमारा सम्मान है। तो सेकंड पॉइंट है पढ़ाई के प्रति प्यार। तीसरा है विद्यालय। जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, ये संसार में जो भी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको विद्या का मंदिर कहते हैं, और वहां विद्या की देवी की मूर्ति रखते हैं, सरस्वती की। तो जो विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए जाते हैं उनके उस स्थान के प्रति कितनी श्रेष्ठ भावनाएं रहती हैं कि ये विद्या का मंदिर है। तो इसी प्रकार से जिस विद्यालय में, जिस यूनिवर्सिटी में आप हम सभी पढ़ते हैं, तो ये विद्यालय, ये यूनिवर्सिटी जो स्वयं विद्यापति ज्ञान के सागर परमात्मा ने स्थापन किया है, तो इस विद्यालय के प्रति हमारा कितना सम्मान, कितना रिगार्ड, कितना रेस्पेक्ट होना चाहिए। और इस विद्यालय के प्रति रेस्पेक्ट अर्थात इस विद्यालय की हर वस्तु से हमारा प्यार होना चाहिए। बाबा कहते हैं यज्ञ की एक एक वस्तु विशेष है, तो आपके एक एक वस्तु के प्रति विशेष प्यार हो, उसके प्रति सम्मान की भावना हो कि ये भगवान का यज्ञ है। और इस भगवान के यज्ञ से एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना हो रही है, इस संसार का परिवर्तन हो रहा है। तो जिस भगवान के यज्ञ से इतना विशेष, इतना महान कार्य हो रहा है, जिस भगवान के इस विद्यालय से देवी और देवताएं बनकर आत्माएं निकलेंगी, तो उस विद्यालय की हर एक वस्तु अमूल्य है, अनमोल है। तो उस विद्यालय की हर एक वस्तु के प्रति हमारा रिगार्ड, रेस्पेक्ट हो, सम्मान हो, चाहे लाइट हो या पानी हो या अन्य कोई भी वस्तु है, उनके प्रति सम्मान अर्थात हमारा इस विद्यालय के प्रति स्वधर्म है कि उनका सम्मान रखना। दूसरी बात है, हमारे जो भावनाएं, वो भावनाएं हमेशा श्रेष्ठ हों, क्योंकि जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में एक साथ बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और हर एक विद्यार्थी की अपनी अपनी विशेषता, अपनी अपनी योग्यता, उसकी अपनी कमजोरी होती है। तो किसी की भी कमजोरी, कमी को देख करके हमारे मन में व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं चलने चाहिए। हमें हमेशा इस विद्यालय में जो हमारी भावनाएं, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो हमेशा ही श्रेष्ठ रहना चाहिए। यदि हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं, तो कहा जाएगा कि इस विद्यालय के प्रति हमारा सम्मान है। चौथी बात है, जो हमारे सहपाठी हैं इस यूनिवर्सिटी में, जो हमारे सहपाठी हैं, उन सहपाठियों के प्रति सम्मान और रिगार्ड। जिस विद्यालय में भगवान पढ़ा रहा है, और उस विद्यालय में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, भगवान उन एक एक विद्यार्थियों को कितना रिगार्ड और रेस्पेक्ट देते हैं, उन एक एक विद्यार्थियों के प्रति भगवान की कितनी श्रेष्ठ भावनाएं कि ये आत्माएं संसार की सबसे महान आत्माएं हैं, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे पहचाना, अर्थात भगवान को पहचाना, ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने संसार का त्याग किया, संसार के लोक लाज कुल की मर्यादाओं का त्याग किया, ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने मेरी श्रीमत को स्वीकार किया, उसको फॉलो कर रहे हैं, और ये वो महान आत्माएं हैं जो भविष्य में देवी देवताएं बनने वाले हैं। ये ऐसी विशेष आत्माएं हैं जिनकी वर्तमान समय संसार में पूजा हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि आपके जो सहपाठी हैं, साथी हैं, उन सभी के प्रति आपकी सदा श्रेष्ठ भावनाएं रहनी चाहिए, सम्मान की भावना रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो विद्यालय भी है तो ये नई दुनिया की स्थापना का ये विशेष स्थान है, और नई दुनिया में जो भी पद पोजीशन है, वो वर्तमान समय की पढ़ाई के दर से हर एक आत्माएं प्राप्त करती हैं। तो यहां नंबर बार तो रहेंगे, लेकिन नंबर बार होते हुए भी हमारी भावनाएं हर एक के प्रति श्रेष्ठ होनी चाहिए। किसी की कमी कमजोरी को देख करके हमें अपनी भावनाओं को बिगाड़ना नहीं है। किसी के प्रति हमारी नेगेटिव भावनाएं, अशुभ भावनाएं या हीन भावनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं और अपने आप को योग्य बना रहे हैं, अपनी कमजोरियों को निकाल रहे हैं और अपने में विशेषताओं को लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो चौथा स्वधर्म है कि जो भी हमारे सहपाठी है, साथी है, उन सभी के प्रति हमारी भावना सदा श्रेष्ठ बनी रहे। अगला पांचवा स्वधर्म है कि इस विद्यालय के में जो भी हमें आज्ञाएं मिली हुई हैं, नियम मर्यादाएं मिली हुई हैं, उनको फॉलो करना, उनका सम्मान रखना। बाबा ने कुछ सप्ताह पहले एक अव्यक्त मुरली में इस बात पर बहुत विशेष अटेंशन खिंचवाया था कि परमात्मा दुआएं प्राप्त करनी है तो बाप की आज्ञाकारी बनो, और इसमें बाबा ने 10 बातें याद दिलाई थी। यदि आप बाप की आज्ञाकारी बनेंगे तो परमात्मा दुआएं आपको प्राप्त होती रहेंगी और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसमें सबसे पहली बात थी, पहली आज्ञा है कि एक बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा कि जो बच्चे इस आज्ञा को पालन करते हैं उन्हें बाप से दुआएं प्राप्त होती हैं और उनके जीवन में सब कुछ सहज हो जाता है। उनके जीवन में कई समस्याएं, कई परिस्थितियां आती हैं, लेकिन बाप की दुआओं के आधार से वो उन समस्याओं से सहज पार हो जाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म और हर कर्मेंद्रिय के लिए बाप ने जो आज्ञा दी है, उसी आज्ञा प्रमाण जो चलते हैं उन्हें बाप से दुआएं प्राप्त होती रहती हैं। तीसरी बात बाबा ने कही थी कि ना किसी को दुख देना और ना किसी से दुख लेना, ये बाप की श्रीमत है, बाप की आज्ञा है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जो किसी को दुख देते तो नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये पूरी पूरी आज्ञा को फॉलो नहीं किया, इसलिए उनके जीवन में हलचल होती रहती है, उनके मन में व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप की आज्ञा है, ना किसी को दुख दो ना किसी से दुख लो। तो जो इस आज्ञा को फॉलो करेंगे वो जीवन में हमेशा पूर्ति कला का अनुभव करते रहेंगे, हमेशा लाइट रहेंगे। चौथी बात बाबा ने उस मुरली में कही थी कि जो आपके 5 ऑर्गन्स हैं उनके लिए बाबा ने कहा कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल एंड थिंक नो इविल। तो बाबा ने कहा बाप की आज्ञा है कि ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा करो, ना बुरा सोचो। जो बच्चे इस आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें बाप से दुआएं प्राप्त होती रहती हैं। अगली पॉइंट बाबा ने कही थी कि दृष्टि और वृत्ति के लिए बाप की आज्ञा है कि आपकी दृष्टि और वृत्ति में दूसरी आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ भावनाएं होनी चाहिए। आपकी दृष्टि में सभी आत्मा, आपकी दृष्टि सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की होनी चाहिए। आपकी वृत्ति सभी आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो जो अपनी दृष्टि वृत्ति को ऐसी श्रेष्ठ बनाकर रखते हैं उन्हें बाप से दुआएं प्राप्त होती हैं। अगली बात बाबा ने कही थी कि तन मन धन ये बाप की अमानत है। तो बाबा ने कहा कि इस बाप की अमानत में कभी भी खजानत नहीं करनी है, इसको कभी भी वेस्ट नहीं करनी है, इसको मिसयूज नहीं करनी है। तो जो बच्चे इन बातों को बाप की अमानत समझते हैं, उसको सही तरह से यूज करते हैं, उनको बाप से दुआएं प्राप्त होती हैं। अगले पॉइंट बाबा ने कही ब्राह्मण जीवन के समय, संकल्प और श्वास ये ब्राह्मण जीवन के अनमोल खजाने हैं, इन खजानों को सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। तो जो बच्चे इन खजानों को श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं उनको बाप से दुआएं प्राप्त होती रहती हैं। और एक विशेष बात बाबा ने कही कि बाप की पहली और मुख्य आज्ञा है पवित्र बनो और योगी बनो, तो जो बच्चे इस आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें बाप से विशेष दुआएं प्राप्त होती रहते हैं। तो बाप का आज्ञाकारी बनना ये हम सभी का स्वधर्म है। जितना हम बाप के आज्ञाकारी बनकर के रहेंगे उतनी बाप से हमें दुआएं मिलेंगे और हम इस विद्यार्थी जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। अगली पॉइंट है अनुशासन, डिसिप्लिन। हर एक स्कूल के विद्यालय के अपने अपने एक अनुशासन होते हैं और उन अनुशासन में रहने का हर एक को आदेश होता है कि उनको सभी को फॉलो करना ही है। तो इसी प्रकार से आप हम सभी ईश्वरीय विद्यार्थियों को जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हमें अनुशासन मिले हुए हैं, डिसिप्लिन मिले हुए हैं, उनको हमें हर कदम में फॉलो करना है। क्योंकि अनुशासन को फॉलो करने से व्यक्ति संयमित बनता है, व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, एक मैच्योर बनता है। बेशक जब अनुशासन को फॉलो करते हैं उस समय कई दिक्कतें आती हैं, मन स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जबरदस्ती भी यदि हम मन को उन अनुशासन पर चलाते हैं तो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते मन उस पर ढलने लगता है और उससे जीवन श्रेष्ठ बनता है, जीवन मैच्योर बनता है, जीवन में बल आता है, हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें जो भी अनुशासन सिखाए सुबह से लेकर के रात्रि तक, सुबह उठने से लेकर के हर कर्म के लिए जो बाबा ने हमें अनुशासन दिए, जैसे कि बाबा साकार मुरली बार बार हमें कहते हैं कि जो आपकी आंखें हैं वो बहुत धोखेबाज हैं, बहुत सातिर हैं, उन पर नजर रखो, उनको अपने कंट्रोल में रखो। तो कंट्रोल में कैसे रखेंगे, जब उन पर अनुशासन रखेंगे, जबरदस्ती उनको श्रेष्ठ कार्य में लगाएंगे, जबरदस्ती उन पर प्रतिबंध लगाएंगे, जो ना देखने वाली चीजें हैं उनको ना देखने के लिए बातें करेंगे, तो जबरदस्ती उनको फॉलो कराएंगे तो आस्ते आस्ते वो उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन के जो भी अनुशासन है बाबा कहते हैं उन अनुशासनों को फॉलो करना है। तो विद्यार्थी जीवन का ये हमारा स्वधर्म है। अगला विद्यार्थी जीवन का स्वधर्म है एकांत प्रिय बनना, एकांतवासी बनना। विद्यार्थी जीवन में अपनी उन्नति के लिए, मानसिक विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए हर एक विद्यार्थी को एकांत प्रिय बनना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम एकांत प्रिय नहीं बनेंगे तब तक हम हमारे में क्या क्या कमी कमजोरियां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं उनको हम समझ नहीं सकेंगे, या हमारे में कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हम पहचान नहीं सकेंगे। साथ साथ स्कूल में जो भी हमें विषय मिलते हैं चिंतन के लिए, मनन के लिए, अध्ययन के लिए, जब तक हम एकांत में नहीं जाएंगे तब तक हमारा उन पर चिंतन नहीं चलेगा। जब हम एकांत में होते हैं, किसी विशेष विषय को लेकर के चिंतन करते हैं, तो उस विषय के संबंधित जो बातें होती हैं वो मन में स्वतः ही इमर्ज होने लगती हैं। तो विद्यार्थी जीवन का ये बहुत श्रेष्ठ स्वधर्म है जिसको हमें फॉलो करना है, कि बीच बीच में समय निकाल करके एकांतवासी बन करके विद्या अध्ययन करें। जो हमने पढ़ाई पढ़ी, जो हमने मुरली सुबह सुनी, मुरली की अच्छी अच्छी पॉइंट्स हमने नोट की, उन पर जाकर के मनन चिंतन करना, उनको रिवाइज करना, उनको याद करना, उनको रिकॉल करना। तो विद्यार्थी जीवन का ये एक स्वधर्म है कि एकांत प्रिय बन करके एकांत में जा करके चिंतन करना, मनन करना। अगला विद्यार्थी जीवन का स्वधर्म है होमवर्क। बाबा हमें जो भी होमवर्क देते हैं तो भगवान होमवर्क देने के साथ साथ शक्ति भी देते हैं। जैसे कि अभी अव्यक्त मुरली बाबा ने आप हम सभी को एक विशेष होमवर्क दिया हुआ है, कौन सा होमवर्क है? आज भी सुबह हमने ड्रिल में सुने, वही ड्रिल थे मनसा सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा कि आप जो भी काम काज करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें से बीच बीच में समय निकाल करके एकांतवासी बन करके मनसा सेवा करो, दुखियों पर रहम करो, दुखी आत्माओं पर रहम की किरणें फैलाओ। संसार की आत्माएं आपको पुकार रही हैं, याद कर रही हैं कि हे हमारे इष्ट देव देवियां पधारो, आकर के हमारे दुख शांति को दूर करो। तो बाबा ने कहा कि ये बाप आपको होमवर्क देते हैं कि बीच बीच में समय निकाल करके एकांतवासी बन करके संसार की आत्माओं की पुकार सुनो, उन पर उपकार करो। संसार में दुख अशांति अपनी चरम सीमा पर है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन करके, उनकी आवाज सुन करके उनकी दुख अशांति को मिटाना बाबा ने कहा जी आपका होमवर्क है, और ये होमवर्क आपको डेली करना है। और बाबा ने कहा कि ये कार्य आप करते रहेंगे तो इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो फायदा ये होगा कि संसार की आत्माएं जो दुख शांति से परेशान है उनको सुख शांति मिलेगी, उनके मन में स्थिरता आएगी, उनके मन को सुकून मिलेगा, साथ साथ आपका समय जो माया बीच बीच में चुरा लेती है, जो माया बीच बीच में आपके मन में व्यर्थ संकल्प विकल्प पैदा करती रहती है, उससे आप सहज बच जाएंगे। तो बाबा हमें जो होमवर्क देते हैं, हम उस समय उस होमवर्क को उसी समय से हम अप्लाई करें तो इससे हमें भगवान की विशेष मदद मिलेगी, शक्ति मिलेगी। क्योंकि भगवान जो भी कार्य करने के लिए हमें कहते हैं उसके साथ साथ वो शक्ति भी देते हैं। तो जो भी बाबा ने हमें होमवर्क दिया, ये हर दिन के मुरली में बाबा हमें जो होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को हमें तुरंत अप्लाई करने है। तो ये आप हम सभी विद्यार्थियों का विशेष स्वधर्म है कि टीचर हमें जो होमवर्क देते हैं उस होमवर्क को हम तुरंत जीवन में अप्लाई करें, अमल में लाएं। अगला स्वधर्म है चार्ट। बाबा अक्सर करके साकार मुरलियों में हमें बार बार याद दिलाते हैं बच्चे चार्ट रखो, बच्चे अपना रजिस्टर रखो, तभी आपको अपने बारे में मालूम पड़ेगा कि हम इस विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या हम रुके हुए हैं या पीछे हट रहे हैं। जैसे बाबा ने अभी दो दिन कुछ दिन पहले साकार मुरली में कहा कि आपकी आंखें बहुत धोखेबाज हैं, तो आंखें धोखेबाज हैं वो हमें मालूम कैसे पड़ेगा? जब हम चार्ट में चार्ट रखेंगे तो बाबा हमें जो बार बार चार्ट रखने के लिए कहते हैं तो हमें वो चार्ट भी रखना है, सिंसियरली वो चार्ट रखना है, तभी हम इस विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और हम चार्ट नहीं रखते हैं, हो सकता है कि हम थोड़े समय के लिए एक अच्छी स्थिति में होंगे तो हमें लगेगा कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम गलती कर लेते हैं, गलती करने के बाद भी हमें एहसास नहीं होता है। जैसे कि बाबा कहते हैं कि योग का चार्ट रखो, याद का चार्ट रखो कि आपने सारे दिन में कितना समय बाप को याद किया। यदि हम प्रॉपर चार्ट रखते हैं तभी हमें एहसास होता है कि हमने बाप को कितना समय याद किया, नहीं तो हमें उसके बारे में कोई भी एहसास नहीं रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम लंबा समय याद में रहते हैं और हमें उसका भी एहसास नहीं हो रहा है, तो इससे हमें दोनों फायदे होते हैं, जो हम कर रहे हैं उसका भी हमें मालूम रहता है और जो हम नहीं कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं उसका भी हमें रियलाइज होता है। तो इसलिए बाबा बार बार हमें चार्ट के लिए जो कहते हैं वो चार्ट भी हमें सेंसियरली रखना है और बीच बीच में उस चार्ट को बदलते रहना है, जिससे नवीनता बनी रहे, जिससे चार्ट में बोरियत फील ना हो। तो हम सभी विद्यार्थियों का यह स्वधर्म है कि हमें डेली का चार्ट रखना है। अगला स्वधर्म है पढ़ना और पढ़ाना। बाबा कहते हैं आप विद्यार्थी भी हो तो टीचर भी हो, आपको ये विद्यालय ये पढ़ाई पढ़नी भी है तो दूसरों को पढ़ानी भी है। और जो विद्यार्थी पढ़ाई पढ़ते हैं लेकिन औरों को पढ़ाते नहीं, उनके लिए बाबा क्या कहते हैं? मनुष्य। और बाबा कहते हैं कि उन्होंने पढ़ा नहीं, प्रॉपरली ठीक से पढ़ा नहीं, समझा नहीं। जिन्होंने समझा नहीं वही दूसरों को नहीं समझा सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने जीवन में ज्ञान के ज्ञान को धारण किया है, वो दूसरों को ज्ञान देने बगैर रह नहीं सकते। जिनकी आंखें खुली हुई है, जो सुरजीत बने, वो दूसरों को जगाने बगैर रह नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना ये आपका स्वधर्म है, तो हर दिन आपको पढ़ाई पढ़नी भी है और दूसरी आत्मा को पढ़ाना भी है। योग्य बनो और बनाओ, योग्य बनना और बनाना, ये हमारे इस ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा घर में तो रड़ियां मारते हैं, लेकिन जब कहो किसी को ज्ञान सुनाओ तो कहते बाबा हमारा मुख नहीं खुलता है। तो बाबा ने कहा कि अपना मुख खोलना अर्थात दूसरों को ज्ञान सुनाना, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो पढ़ना और पढ़ाना ये हमारा स्वधर्म है। अगला स्वधर्म है कैरेक्टर, चरित्र। विद्यार्थियों का स्कूल कॉलेज में विशेष लक्ष्य रहता है, उनको सिखाते भी है कि अपने चरित्र को हमेशा अच्छा बना के रखना है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में जैसा आपका चरित्र बनेगा वो सारा जीवन आपके काम में आएगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि यदि तीन बातें, पहली बात यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, क्योंकि धन को आप बाद में कमा सकते हैं। दूसरी बात स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि जो किसी भी कारण से बीमारी से या किसी भी कारण से जो शरीर में उसका इफेक्ट पड़ता है उसका लंबे समय तक उसका असर रहता है, शायद आजीवन भी रहे। तो बाबा कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया। क्योंकि अगर एक बार आपके चरित्र पर दाग लगता है, कलंक लगता है, तो जीवन भर वो चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि अपने चरित्र को हमेशा श्रेष्ठ बना के रखना है, और भगवान की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो हमारे इस जीवन को चरित्रवान बनाने के लिए ये पढ़ाई है। तो हम सभी विद्यार्थियों का ये स्वधर्म है कि अपना चरित्र हमेशा ऊंचा बना के रखना, श्रेष्ठ बना के रखना, किसी भी कारण से उस पर कोई दाग ना लगे, कोई अंगुली ना उठाए। उसके लिए बाबा विशेषकर जो हमारी प्योरिटी है, पवित्रता है, उसके लिए हमेशा कहते हैं, क्योंकि अगर एक बार विद्यार्थी फेल हुआ तो सारा जीवन उस बात को भूल नहीं सकता। बेशक कितना भी पढ़ाई में वो आगे बढ़ जाए, लेकिन ये दाग उसके मन को हमेशा खाता रहेगा। तो जिस विद्यार्थी जीवन के जो चरित्र हैं, जो विशेष धारणाएं हैं, उन धारणाओं पर हमें पूरा पूरा अटेंशन रखना है, उसमें निखार लाना है, कदम कदम पर उसको फॉलो करना है। तो ऐसे विद्यार्थी जीवन के जो विशेष नियम हैं, कायदे हैं, उनको हमें जीवन में लेते हुए यदि हम आगे चलते हैं, कदम कदम पर उनको फॉलो करते हैं, तो कहा जाएगा कि इस विद्यार्थी जीवन के जो स्वधर्म हैं, उन स्वधर्म पर चल करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके माध्यम से जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, कि इस विद्यार्थी जीवन में अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना, अपने लक्ष्य को हासिल करना, जीवन में सर्व गुणों को, सर्व विशेषताओं को धारण करना, और भगवान का जो दिल तख्त है, उस दिल तख्त पर विराजमान हो रहा, उसमें हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो विद्यार्थी जीवन के जो कुछ स्वधर्म हैं, उनको हमें बार बार याद करना है, रिवाइज करना है, और उनको कदम कदम पर फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्वधर्म है शिक्षक के प्रति प्यार और सम्मान, रिगार्ड। जो शिक्षक परम धाम से इतने दूर देश से संसार में आकर के हमें पढ़ाता है, तो उसके प्रति हमारा कितना रिगार्ड, रेस्पेक्ट, सम्मान होना चाहिए। दूसरा स्वधर्म है पढ़ाई के प्रति स्वधर्म, उसके लिए रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। तीसरा है स्कूल के प्रति, जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में, जिस विद्यालय के माध्यम से हम अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना रहे हैं, उसके प्रति रिगार्ड, रेस्पेक्ट, सम्मान। चौथा है सहपाठियों के प्रति स्वधर्म, उनको रिगार्ड देना, उनकी कमी कमजोरियों के बारे में जानते हुए भी उनको बुद्धि में बार बार रिवाइज नहीं करते रहना कि इसमें ये है, इसमें वो है, उसमें वो है। सब वैरायटी है, हर एक की अपनी कमी कमजोरियां हैं, हर एक की अपनी विशेषता है, लेकिन हमें हर एक सभी के प्रति शुभ भावनाएं रखनी है। अगला पांचवा है आज्ञाएं, नियम मर्यादाएं, जो ब्राह्मण जीवन की नियम मर्यादाएं हैं उनको फॉलो करना, अर्थात स्वधर्म में चलना। छठा है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो इस ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हमें जो भी अनुशासन सिखलाए हैं उनको फॉलो करना। अगली पॉइंट है एकांत प्रिय बनना। जब हम एकांत प्रिय बनेंगे, बीच में समय निकाल करके एकांत में जाएंगे, तभी हम जीवन में कुछ चिंतन, कुछ मनन कर सकेंगे, अपनी कमी कमजोरियों को हम पहचान सकेंगे, अपनी विशेषताओं को जान सकेंगे, उनको जीवन में अप्लाई कर सकेंगे। अगली पॉइंट होमवर्क। शिक्षक हमें जो भी होमवर्क देते हैं उनको हमें तुरंत फॉलो करना है, अप्लाई करना है। अगले पॉइंट चार्ट। इस विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो बाबा हमें चार्ट रखने की शिक्षा देते हैं, बार बार चार्ट रखने के लिए हमें जो कहते हैं, वो हमें चार्ट रखना है, जिससे हमें अपने बारे में पता रहे। अगले पॉइंट पढ़ना और पढ़ाना। ये हमारा स्वधर्म है, जैसे हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमें पढ़ाना भी है। और लास्ट पॉइंट चरित्र। ब्राह्मण जीवन का जो चरित्र है वो हमेशा हमें उसको मेंटेन रखना है, उसको और भी हमें श्रेष्ठ बनाते चलना है। तो ये विद्यार्थी जीवन के कुछ ऐसे स्वधर्म हैं जिन्हें हमें कदम कदम पर फॉलो करते हुए चलना है। ओम शांति।
तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है, ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, अपकारी पर कर उपकार, यही है शब्द तुम्हारे बाबा तुम्हारे शेषान, सदा है संग हमारे बाबा तुम्हारे शेषान, सदा है संग हमारे।